लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे अत्याचार और उत्पीड़न निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यातनाओं के उन्मूलन को सुनिश्चित करने हेतु ठोस रूप से प्रतिबद्ध रहे और पीड़ितों एवं उनके परिवारों को सहायता की गारंटी प्रदान करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है रविवार ये देवदूत प्रार्थना के पूर्व संत पापा फ्रांसिस का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने पवित्रतम त्रित्वमय महोत्सव के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में देवदूत प्रार्थना हेतु एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi, solennità della Santissima Trinità, il Vangelo è tratto dal dialogo di Gesù con Nicodemo.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज त्रित्वमय ईश्वर के महोत्सव का सुसमाचार हमारे लिए यीशु और निकोदेमुस के बीच हुई वार्ता को प्रस्तुत करता है। निकोदेमुस शास्त्रियों के उस दल का सदस्य था जो ईश्वरीय रहस्य को लेकर अपने में उत्साहित रहता था। वे यीशु में दिव्य ईश्वर की शिक्षा को पहचानते और गुप्त रूप में रात को उनसे वार्ता करने जाते हैं। यीशु ने उनकी बातें सुनी। वे उनमें इस बात को पहचानते हैं कि वे ज्ञान की खोज में हैं। अतः वे पहले उन्हें आश्चर्यचकित करते हैं, यह कहते हुए कि ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने हेतु किसी को पुनः जन्म लेने की आवश्यकता है। और तब वे इसके गूढ़ रहस्य को उनके लिए यह कहते हुए प्रकट करते हैं।
Dio ha amato così tanto l'umanità da mandare il suo figlio nel mondo.
ईश्वर ने मानव जाति को इतना प्रेम किया कि उन्होंने उनके लिए अपने एक लौटे पुत्र को दुनिया में भेजा। यीशु अतः बेटे के रूप में अपने पिता और उनके अतुल्य प्रेम के बारे में कहते हैं। संत पापा ने कहा, पिता और पुत्र, यह हमारे लिए एक परिचित निशानी है और यदि हम इसके बारे में विचार करें तो यह हमारे ईश्वर की निशानी को बिगाड़ती है। वास्तव में ईश्वर शब्द हमारे लिए एकमात्र राजकीय और सुदूर सच्चाई को व्यक्त करती है। वहीं एक पिता और एक पुत्र का जिक्र करना हमें वापस घर ले आता है। हाँ, हम इस तरह ईश्वर के बारे में विचार कर सकते हैं एक परिवार के संदर्भ में जो मेज के चारों ओर एक साथ जमा होता है, जहाँ जीवन को साझा किया जाता है। इसके अलावे मेज जो हमारे लिए एक बलि वेदी है, एक वह निशानी जिसके द्वारा कुछ निश्चित चिन्ह हमें पवित्र आत्मा की ओर इंगित करते हैं। यह वह निशानी है जो हमारे लिए ईश्वर के संग एकता की बात व्यक्त करती है, जहां हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को एकता में पाते हैं।
Ma non è solo un'immagine, è realtà. È realtà perché lo Spirito Santo, lo Spirito che il Padre mediante Gesù ha infuso nei nostri cuori, ci fa gustare.
लेकिन यह केवल एक निशानी मात्र नहीं है, संत पापा ने कहा, यह एक सच्चाई है। यह सच्चाई है क्योंकि पवित्र आत्मा, जिसे पिता आत्मा के रूप में यीशु ख्रीस्त के माध्यम हमारे हृदयों में उड़ेलते हैं, जो हम में ईश्वरीय उपस्थिति का स्वाद लाते हैं, हमें यह अनुभव दिलाते हैं कि मुक्तिदाता ईश्वर सदैव हमारे निकट रहते हैं। वे हमारे लिए करुणावान और कोमलता हैं। पवित्र आत्मा हमारे संग वही करते हैं जिसे यीशु निकोदेमुस के संग करते हैं। वे हमारे लिए नए जन्म के रहस्य को लाते हैं। वे हमारे विश्वास के रहस्य ख्रिस्तीय जीवन को व्यक्त करते हैं। वे हमारे लिए पिता के हृदय को प्रकट करते और वे हमें ईश्वरीय जीवन के भागीदार बनाते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा,
L'invito che ci rivolge, potremmo dire, è quello di stare a tavola con Dio per condividere il suo amore.
वे हमें जो निमंत्रण देते उसके बारे में हम कह सकते हैं कि वे हमें पिता के संग भोज में शामिल करते और उनके प्रेम के भागीदार बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यह हर यूखरिस्तीय बलिदान में होता है, परम प्रसाद की बलि वेदी में, जहां यीशु ख्रिस्त अपने को पिता के लिए और हमारे लिए बलि अर्पित करते हैं। हाँ प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा कि ईश्वर हमारे लिए एक प्रेममयी एकता है। यीशु हमें अपने को इसी रूप में व्यक्त करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हम कैसे इसे याद कर सकते हैं? यह सबसे सरल निशानी क्रूस का चिन्ह अंकित करने के रूप में, जिसे हमने बच्चों की भांति अपने जीवन में सीखा है। अपने शरीर में क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए हम अपने को इस बात की याद दिलाते हैं कि ईश्वर हमें कितना अधिक प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि वे हमारे लिए अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं। हम इसे अपने में दोहराते हैं कि उनका प्रेम हमें पूरी तरह से ढक लेता है, ऊपर से नीचे तक, दाएं बाएं, चारों ओर से, एक आलिंगन की भांति, जहां हम अपने को कभी छोड़े नहीं जाने का अनुभव करते हैं। इसके साथ ही हम अपने को ईश्वर के प्रेम का साक्ष्य देने हेतु समर्पित करते हैं, उनके नाम में एकता स्थापित करते हैं। संत पापा ने सबों से आग्रह किया कि वे अपने को क्रूस के चिन्ह से अंकित करें।
In silenzio ognuno di noi e tutti insieme facciamo il segno della croce su di noi.
संत पापा ने कहा कि हम अपने में पूछ सकते हैं, क्या हम ईश्वर का साक्ष्य प्रेम के रूप में देते हैं, या प्रेम के रूप में ईश्वर हमारे लिए एक विषय बन जाते हैं, एक ऐसी चीज जिसके बारे में हमने सुना है जो हमारे जीवन को उत्तेजित नहीं करता है।
Se Dio amore, le nostre comunità lo testimoniano. Sanno amare, le nostre comunità sanno amare. La nostra famiglia sappiamo amare in famiglia.
यदि ईश्वर प्रेम है तो क्या हमारे समुदाय प्रेम करना जानते हैं? और हमारे परिवार, क्या हम अपने परिवार में प्रेम करना जानते हैं? क्या हम अपने दरवाजों को सदैव खुला रखते हैं? संत पापा ने कहा, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में है, जो हमारे लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं। माता मरियम हमें एक कलीसिया के रूप में परिवार की तरह जीवन व्यतीत करने में मदद करें, जहां हम प्रेम का अनुभव करते हैं, जिसके द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर की महिमा होती है। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Dit nomen Domini benedictum.
Ex opto nunque tusque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
अपने देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने भारतीय रेल दुर्घटना में हताहत हुए लोगों की याद करते हुए मृतकों की आत्मा हेतु शांति की कामना की और घायल हुए लोगों के परिजनों को अपनी सांत्वना प्रदान की।
Avvenuto due giorni fa in India. Sono vicino ai feriti e ai familiari. Padre celeste accolga nel suo regno le anime dei defunti.
इसके उपरांत उन्होंने सभी विश्वासियों और तीर्थ यात्रियों का अभिवादन किया और अंत में सबों को रविवार ये मंगल कामनाएं अर्पित कर अपने लिए प्रार्थना का निवेदन करते हुए विदा ली।
Auguro una buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन एवं ब्लू फेस्टिवल के आयोजकों और प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से लगातार हमले के तहत पृथ्वी की रक्षा करना ईश्वर के सामने हमारी जिम्मेदारी है, जिसके लिए सभी की ठोस प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार को वाटिकन में ग्रीन एंड ब्लू फेस्टिवल के प्रतिभागियों और आयोजकों को संबोधित करते हुए कहा, आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। आज के दिन मैं आपसे ग्रह की रक्षा के लिए ठोस कार्यवाही करने की हमारी साझा जिम्मेदारी को पहचानने की अपील करता हूं। रोम में आज और 6 से 8 जून तक मिलान में निर्धारित कार्यक्रमों के साथ उत्सव इतालवी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को एक साथ लाता है, जो जलवायु परिवर्तन से तत्काल निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट हैं। संत पापा ने उन्हें पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने विश्व को तबाह करने वाली हिंसक प्राकृतिक आपदाओं पर भी ध्यान आकर्षित किया, जैसा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सद्भावना वाले सभी लोगों से हमारे आम घर की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया। संत पापा ने जोर देकर कहा कि यह ईश्वर के प्रति हमारी जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ाता है, जिसने हमें अपने पड़ोसियों के सामने और आने वाली पीढ़ियों से पहले सृष्टि की देखभाल सौंपी है। उन्होंने याद किया कि उत्तर औद्योगिक काल की मानवता इतिहास में सबसे गैर जिम्मेदार लोगों में से एक के रूप में याद किया जा सकता है। उन्होंने कहा, उम्मीद है हमारी गंभीर जिम्मेदारियों को मानते हुए 21वीं सदी की शुरुआत की मानवता को उदारता के लिए याद किया जा सकता है। और संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 5 जून को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में चिंतेसिमुस आनुस प्रो पोंतेफिचे फाउंडेशन के करीब 300 सदस्यों से मुलाकात की। संत पापा ने फाउंडेशन की 30वीं वर्षगांठ पर उन्हें बधाई दी। यह संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के विश्व पत्र के बाद शुरू हुआ, जो संत पापा लियो के ऐतिहासिक रेरुम नोवारुम 13वीं की शताब्दी पर लिखा गया था। संत पापा ने कहा, आपकी प्रतिबद्धता ठीक इसी रास्ते पर इस परंपरा में रखी गई है, यानी कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत का अध्ययन और प्रसार करना, यह दिखाने की कोशिश करना कि यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है बल्कि एक जीवन शैली बन सकती है जिससे मनुष्य के योग्य समाज का विकास हो सके। संत पापा ने कहा, व्यक्ति की केंद्रीयता, जन कल्याण, एकता और सहायता इन 30 वर्षों में आपके लिए ठोस कार्यों में परिवर्तित हो गई है। और अनेकों लोगों और उनके काम के तरीके को प्रभावित किया है। संत पापा ने सामाजिक सिद्धांत के विकास के लिए उनके बहुमूल्य योगदान हेतु अपना आभार व्यक्त किया। संत पापा ने कहा, आप में से कई आर्थिक क्षेत्र में काम करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वास्तविकता की कल्पना करने का एक तरीका कितना फायदेमंद है, जो व्यक्ति को केंद्र में रखता है, जो कार्यकर्ता को कम नहीं करता और जो सभी के लिए अच्छा बनाने की कोशिश करता है। वह सभी के लिए हो सकता है। संत पापा ने कहा, कुछ लोग समुदाय के संदर्भ में वस्तुओं के विनियोग पर सभी के जीवन की प्राथमिकता के बारे में सोचते और कार्य करते हैं। यह गरीबी, असमानता, काम, जमीन, घर की कमी, सामाजिक और श्रम अधिकारों से वंचित होने के संरचनात्मक कार्यों के खिलाफ भी लड़ना है। संत पापा ने कहा, नैतिकता उपहार के लिए अपील करना और विनिमय के लिए नहीं। चिंतेसिमुस आनुस फाउंडेशन का मूल्यवान कार्य एक ऐसे समुदाय के विकास को बढ़ावा देने में योगदान देना है, जिसमें दूसरों के लिए जगह हो, एक ऐसा भविष्य जहां हर कोई अपनी जगह पा सके, एक ऐसा समुदाय जो बेजुबानों की आवाज देना जानता है, एक समुदाय जिसमें हम शांति के मार्ग पर एक साथ चल सकते हैं। वाटिकन प्रेस कार्यालय ने सोमवार को जून महीने के धार्मिक समारोह का कार्यक्रम जारी किया, जिसकी अध्यक्षता संत पापा फ्रांसिस करेंगे। गुरुवार 29 जून संत पेत्रुस और संत पाउलुस के पर्व दिवस पर संत पापा फ्रांसिस संत पेत्रुस महागिरजा घर में सुबह 9:30 बजे पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। पवित्र मिसा के दौरान संत पापा फ्रांसिस पालियो अर्थात अंबारिका को आशीष देंगे और नव नियुक्त महाधर्माध्यक्षों को प्रदान करेंगे। उधर कार्डिनल मतेओ जुप्पी ने आज सोमवार 5 जून को कीव में एक मिशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य यूक्रेन में संघर्ष के तनाव को कम करना है। कार्डिनल जुप्पी, जो बोलोनिया के महाधर्माध्यक्ष और इतालवी धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, कल मंगलवार 6 जून तक यूक्रेन की राजधानी कीव में संत पापा फ्रांसिस के दूत के रूप में रहेंगे। यह एक पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य यूक्रेनी अधिकारियों को शांति प्राप्त करने के संभावित तरीकों के बारे में गहराई से सुनना और मानवता के इशारों का समर्थन करना, जो तनाव कम करने में मदद करेगा। कार्डिनल जुप्पी की नियुक्ति की खबर 20 मई को वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी की गई थी। इससे पहले संत पापा फ्रांसिस ने खुद ही पीड़ित पूर्वी यूरोपीय देश के लिए एक शांति मिशन की बात की थी। उधर भारत में एक घातक रेल दुर्घटना की शुरुआती जांच से पता चलता है कि आपदा के लिए सिग्नल त्रुटि जिम्मेदार हो सकती है। ओडिशा हादसे पर विदेशों के राजनेताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। यह घटना शुक्रवार शाम को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के पूर्वोत्तर बालासोर जिले में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 275 लोगों की मौत हो गई और 1,100 से अधिक लोग घायल हो गए। मीडिया खबरों के अनुसार रेल अधिकारियों व रेल मंत्री ने शनिवार को कहा कि इस दुर्घटना के लिए संभवतः सिग्नल की नाकामी जिम्मेदार थी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, लेकिन परिवहन विशेषज्ञों का कहना है कि यह दुर्घटना दशकों में सबसे घातक है। ओडिशा हादसे पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।